सात मोहरों के युग। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 1 से 17। प्रकाशित वाक्य के प्रत्येक अध्याय के विषय को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य के वचन की प्रस्तावना। अध्याय 2 और 3, एशिया की सात कलीसियाओं को पत्री। अध्याय 4, यीशु जो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है। अध्याय 5, यीशु जो पिता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है। अध्याय 6, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सात युग। अध्याय 7, वे जो महान क्लेश के दौरान बचाए जाएंगे। अध्याय 8, सात विपत्तियों को सुनाने वाली तुरही। अध्याय 9, अथाह गड्ढे की विपत्तियां। अध्याय 10, रैप्चर कब होगा। अध्याय 11, जैतून के दो पेड़ और दो भविष्यवक्ता कौन है। अध्याय 12, परमेश्वर की कलीसिया जो बड़ी पीड़ा का सामना करेगी। अध्याय 13, मसीह विरोधी का उदय और संतों की शहादत। अध्याय 14, संतों का पुनरुत्थान और रैप्चर और हवा में उनके द्वारा परमेश्वर की स्तुति। अध्याय 15 और 16, सात कटोरे की विपत्तियों की शुरुआत। अध्याय 17, बड़ी वेश्या का न्याय जो बहुत जल पर बैठी है। अध्याय 18, बाबुल का पतन। अध्याय 19, सर्वशक्तिमान द्वारा शासित एक राज्य। अध्याय 20, हजार साल का राज्य। अध्याय 21, स्वर्ग से पवित्र शहर। और अध्याय 22, नया स्वर्ग और पृथ्वी जहां जीवन का जल बहता है। पहले अध्याय से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य के वचन के प्रत्येक अध्याय का एक विषय है, और जब वे प्रकट होते हैं तो वे सभी एक दूसरे के साथ अंतिम अध्याय से जुड़ते हैं। जैसे रोमियो में जहां अध्याय 1 परिचय है, अध्याय 2 यहूदियों के लिए परमेश्वर का वचन है और अध्याय 3 अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी प्रत्येक अध्याय के लिए एक विषय के साथ आगे बढ़ती है। पूरे वचन के आधार पर मैं प्रकाशित वाक्य की व्याख्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने सभी प्रकार की परिकल्पनाओं के साथ प्रकाशित वाक्य पर चर्चा की है, और यदि आप प्रकाशित वाक्य को इन धारणाओं के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप गंभीर गलतियां करने से बचेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा से प्रेरित परमेश्वर के लोगों के माध्यम से लिखी गई थी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें सुधार की आवश्यकता हो। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों में त्रुटियां हैं और उनमें कई सुधार की आवश्यकता है, चाहे लेखक का लेखन कितना भी अच्छा और ज्ञानवर्धक क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी नहीं बदला है, भले ही फिर हजारों साल बीत क्यों नहीं गए हो। कई सालों के बिताने के बावजूद परमेश्वर का वचन निर्दोष बना हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर के उन सेवकों के द्वारा लिखा गया था जिनके हृदय पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। क्योंकि जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है वह बाइबल में छिपा है। हम में से बहुत से लोग पवित्र शास्त्र से अनभिज्ञ रहे हैं, परंतु सृष्टि के आरंभ से ही बाइबल कभी नहीं बदली, एक बार भी नहीं। फिर भी क्योंकि बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन और उसकी योजना की बुरी समझ थी, उन्होंने अपने विचारों के साथ पवित्र शास्त्र की व्याख्या करना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर अपने रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करता है जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं और वचन के अनुसार विश्वास नहीं करते हैं। जो केवल परमेश्वर का नाम लेकर अपने लालच को भरने की कोशिश करते हैं वे कभी भी सत्य को नहीं देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों में पाप है वे प्रकाशित वाक्य के वचन को कभी भी नहीं समझ सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। यह वचन को समझने में उनकी असामर्थ्यता के कारण है कि सभी प्रकार की गलतियां की जाती है। कुछ अंत समय के बारे में बेकार भ्रम में विश्वास करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और यहां तक कि यीशु के दूसरे आगमन के समय की घोषणा भी करते हैं, जबकि अन्य लोग अपनी मर्जी से बाइबल की व्याख्या करते हैं। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की शास्त्रीय गलतियां करते हैं। उनके प्रतिनिधि उन धर्मशास्त्रियों में से जिन्होंने हमें बचानते हैं, अब्राहम कुइपर और लुई बरखोफ है, जिन्होंने हजार साल के राज्य की तरफदारी की, साथ ही सी आई स्कोफील्ड जिन्होंने पूर्व क्लेश रैप्चर का समर्थन किया। लेकिन इन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परिकल्पनाएं सभी गलत शिक्षाएं हैं जो केवल उनके अपने विचारों पर आधारित है। सबसे पहले रूढ़िवादियों द्वारा समर्पित हजार साल के राज्य के सिद्धांत का तर्क है कि कोई अलग हजार साल का राज्य नहीं है और यह राज्य अब इस पृथ्वी पर रहने वाले संतों के दिलों में पूरा हो गया है। सहस्त्राब्दीवाद भविष्य में हजार साल के राज्य की वास्तविक स्थापना को नकारता है। यह परिकल्पना हजार साल के राज्य की प्रतीकात्मक शब्दों में व्याख्या करती है, उस अवधि को बयान करती है जिसके दौरान संत यीशु मसीह की वापसी तक हजार साल के राज्य के शासन की अवधि के रूप में रहते हैं। लेकिन हजार साल का राज्य द्वारा दी गई व्याख्या कि हजार साल का राज्य पहले से ही महान क्लेश के बिना सब संतों के हृदय में साकार हो चुका है, यह बहुत गलत है। हालांकि स्कोफील्ड द्वारा प्रतिपादित पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत सहस्त्राब्दीवाद की तुलना में दुनिया भर में और भी अधिक व्यापक है, लेकिन इस युगवाद ने अंत में परमेश्वर की योजना को ही बदल दिया है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी सात युगों की योजना बनाई थी और समय बीतने के साथ उन्होंने अपनी योजना के अनुसार सब कुछ पूरा किया है। लेकिन जो लोग प्रकाशित वाक्य 6 में प्रकट की गई परमेश्वर की योजना से अनजान है, उन्होंने क्लेश पूर्व रैप्चर के इस दोषपूर्ण सिद्धांत को उत्पन्न किया है। उनका तर्क है कि महान क्लेश की शुरुआत से पहले अन्य जातियों के बीच से नया जन्म पाए हुए लोगों का रैप्चर होगा और इसराइल के कुछ लोग क्लेश की 7 साल की अवधि के दौरान बचाए जाएंगे। यह सिद्धांत एक ऐसे सिद्धांत के रूप में बना हुआ है जिसने कई लोगों को बड़ी उलझन में डाल दिया है। यदि महाक्लेश से पहले संतों का रैप्चर होता, जैसा कि पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत द्वारा दावा किया गया है, तो न तो संतों का उत्पीड़न होगा और न ही उनकी शहादत होगी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13 में दर्ज है। इसलिए यीशु में विश्वासियों को पूर्व क्लेश रैप्चर के इस सिद्धांत के बाहर निकलना चाहिए और इस तथ्य पर विश्वास करके उनके विश्वास को तैयार करना चाहिए कि उनका रैप्चर महान क्लेश के बीच में होगा। प्रकाशित वाक्य का वचन हमें प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर अपने 7 युगों की कलीसिया के व्यवस्था के द्वारा दुनिया का नेतृत्व करेगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में चर्चा की गई है, हमें परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युगों की योजना में देखना चाहिए। लोग भ्रमित हैं और उनका विश्वास अस्थिर है, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र के इन 7 युगों की सच्चाई को नहीं जानते हैं। इसलिए हमें प्रकाशित वाक्य 6 में जो लिखा है उस पर विश्वास करना चाहिए, जैसा कि यह प्रतीत होता है। ऐसा करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र के केवल छोटे असंबद्ध भागों को देखकर आंशिक रूप से सोचने के बजाय संपूर्ण बाइबल द्वारा प्रमाणित 7 युगों के गुप्त वचन में विश्वास करना चाहिए। जैसे पानी और आत्मा का सुसमाचार लोगों से छिपा हुआ था, वैसे ही परमेश्वर के 7 युग भी छिपे हुए हैं। हालांकि बाइबल के विद्वानों ने प्रकाशित वाक्य के वचन को समझने की कोशिश की है और अपने स्वयं के विचारों पर ध्यान केंद्रित करके कई सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है, फिर भी प्रकाशित वाक्य के वचन को समझना अभी भी बहुत मुश्किल है। यह इस तथ्य के समान है कि पानी और आत्मा का सुसमाचार अब तक छिपा हुआ था, लेकिन विद्वानों ने अब तक मसीह की वापसी, संत के रैप्चर या 1000 साल के राज्य के बारे में जिन सिद्धांतों को सामने रखा है, उसके यीशु में विश्वास करने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ है। हमारे लिए प्रकाशित वाक्य के वचन को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अध्याय 6 को समझें। यह अध्याय प्रकाशित वाक्य के सभी वचनों को हल करने और समझाने की कुंजी है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य के पूरे वचन को समझने की कोशिश करें, हमें एक बात याद रखनी चाहिए। पानी और आत्मा के सुसमाचार को समझे और उसमें विश्वास किए बिना प्रकाशित वाक्य को समझना असंभव है। आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के सत्य को तभी समझा जा सकता है जब आप पहले पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में दर्ज है, जब उसने 7वीं मुहर खोली, तब 7 तुरहियों की विपत्तियां संसार पर उतरेगी। यह उन घटनाओं की व्याख्या करता है जो प्रकाशित वाक्य 6 में दर्ज 4थे युग यानी पीले घोड़े के युग के दौरान प्रकट होगी। पहले परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युगों को समझे बिना आप 7 तुरहियों की विपत्तियों को भी नहीं समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के वचन को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए हमें सबसे पहले पानी और आत्मा के सुसमाचार को समझना और उसमें विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रकाशित वाक्य 6 में परमेश्वर का वचन उस समय के समग्र रूपरेखा को प्रदान करता है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना करते समय बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के आदि और अंत को 7 अलग-अलग युगों में विभाजित किया है। ये हैं: पहला सफेद घोड़े का युग, दूसरा लाल घोड़े का युग, तीसरा काले घोड़े का युग, चौथा पीले घोड़े का युग, पांचवा संतों की शहादत और उत्साह का युग, छठा विश्वास के विनाश का युग और 7वां 1000 साल के राज्य और नया स्वर्ग और पृथ्वी का युग। हम विश्वास करते हैं और मानते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अपनी योजना को इन 7 युगों में विभाजित किया है। वर्तमान में विश्व काले घोड़े के युग में है, जो सफेद और लाल घोड़े के युग से गुजरता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जिस युग में हम अब जी रहे हैं वह अकाल का युग है, लेकिन पीले घोड़े का युग भी हमारे निकट है। पीले घोड़े के युग के आगमन के साथ महान क्लेश के 7 साल की अवधि में प्रवेश करते हुए संतों की शहादत का युग शुरू होगा। क्लेशों और शहादत का यह युग पीले घोड़े का युग है। जब उसने 4थी मुहर खोली, तो मैंने 4थे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यहां यह पद्यांश कहता है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार लोगों को मार डाले। यह दर्शाता है कि पीले घोड़े के युग के दौरान मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा और संतों को शहीद बनाएगा। पीले घोड़े के युग के दौरान होने वाली घटनाओं को प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 1 से 7 में दर्ज किया गया है। जैसा कि लिखा है, जब उसने 7वीं मुहर खोली, तो स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें सात तुरहिया दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरहिया थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में सात तुरहियों की विपत्तियों की उपरोक्त चर्चा प्रकाशित वाक्य 6 में दर्ज पीले घोड़े के युग की सच्चाई का एक विस्तृत पुनरावृत्ति प्रदान करती है। यह वचन मसीह विरोधी के उद्भव और सात तिरहियों की विपत्तियों को और सात कटोरे जो पीले घोड़े के युग के दौरान सामने आएंगे विस्तार से दर्ज करता है। दूसरी ओर अध्याय 4 और 5 हमें बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया पर और आने वाले सभी लोगों पर परमेश्वर के रूप में राज्य करेगा, और पिता की पूरी योजना यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के रूप में पूरी होगी। इस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के माध्यम से देख सकते हैं कि वास्तव में यीशु मसीह कितना सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 8 हमें बताता है, तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरहिया थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। जब पीले घोड़े का युग आता है तब पृथ्वी का एक तिहाई जंगल जल गया, और इसके बाद उससे भी ज्यादा विपत्ति आई। पहली तुरही की विपत्ति एक ऐसी विपत्ति है जो एक तिहाई पेड़ों और सारी घास को जला देगी। जब यह आपदा दुनिया पर प्रहार करेगी तो शेष जंगल भी दुनिया के एक तिहाई हिस्से में फैली भीषण आग के धुंध के प्रभाव से तबाह हो जाएगा, जिसका धुआं पृथ्वी से सूर्य को अवरुद्ध कर देगा। फसलें नष्ट हो जाएंगी और सारा संसार बड़े अकाल और भुखमरी में डाल दिया जाएगा। अकाल के इस युग में एक दिन की मेहनत से एक चौथाई गेहूं या तीन चौथाई जौ ही खरीदा जा सकता है। दुनिया अब इस असाधारण अकाल और भुखमरी के आसन्न आगमन का सामना कर रही है। इस संसार का अकाल भौतिक और आत्मिक दोनों तरीकों से आएगा। आज की दुनिया में आत्मिक अकाल पहले से मौजूद है। आज की कलीसियाएं केवल नाम मात्र के मसीहियों से भरी हुई है जो आत्मिक रोटी और पानी और आत्मा के सुसमाचार के जीवन को दुनिया के साथ साझा करने में असमर्थ है। दुनिया भर के लोग यूरोप से लेकर एशिया से लेकर अमरीकी महाद्वीप तक सभी अब अपने विनाश के दौर में जी रहे हैं। आज के मसीही धर्म में कुछ लोग भूखे आत्माओं को खिलाने के लिए आत्मिक रोटी प्रदान करते हैं। हम पीले घोड़े के युग का वर्णन मसीह विरोधी के उद्भव के युग के रूप में करते हैं। इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाएं रोटी और पानी को दुर्लभ वस्तुओं में बदल देगी, जहां हर कोई बड़े अकाल को प्रभावित मुश्किल से बच पाएगा। यद्यपि दुनिया अपनी वैज्ञानिक प्रगति के साथ जारी रहेगी, फिर भी जीवन स्तर अत्यधिक गरीबी में गिर जाएगा, जैसा कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ऐसी दुनिया में रहने वाले लोगों में अपने जीवन को जारी रखने की कोई इच्छा बची रहेगी? क्लेश के इस समय में हम सभी को अपनी शहादत को गले लगाना चाहिए और पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जो संत इस प्रकार पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे अपनी शहादत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। बदले में परमेश्वर अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हुए लोगों को स्वर्ग में उठाएंगे और उन्हें मेमने के विवाह भोज में आमंत्रित करेंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए उसका सेवक बना। प्रेरितों ने पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार किया ताकि बहुत से लोग हजार साल के राज्य में प्रवेश कर सके। महान क्लेश के समय इसराइल में ऐसे लोग होंगे जो यीशु में विश्वास करने के लिए शहीद होंगे और रैप्चर भी होंगे। इस प्रकार संत पीले घोड़े के युग के दौरान महान क्लेश की अवधि के होंगे। जब महान क्लेश आएगा तो इस दुनिया में हर कोई किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होगा जो आपदा से त्रस्त दुनिया में व्यवस्था ला सके। वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरसेंगे जो विनाशकारी प्रकृति आपदाओं द्वारा आई समस्याओं को हल कर सकता हो, और जो कई राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान कर सकता हो जिनका वे सामना करते हैं। यह तब होगा जब मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा। हाल ही में एक जापानी लेखक ने द स्टोरी ऑफ द रोमन्स नामक पुस्तक की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें रोमन सम्राटों की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। लेखक का मुख्य तर्क यह था कि दुनिया को जल्द ही एक ऐसे नेता की आवश्यकता होगी जो संपूर्ण सामर्थ्य प्राप्त कर सके। कई लोग उनकी बात से सहमत भी थे। महान क्लेश के दौरान लोग एक शक्तिशाली शासक चाहते हैं जो लोहे की मुट्ठी के साथ दुनिया भर पर शासन कर सके और अपने राज्य के साथ बहुत सारे शासक नहीं लेकिन पूरी दुनिया का एक अकेला शक्तिशाली शासक हो। वर्तमान में दुनिया कई राष्ट्र राज्यों में विभाजित है और प्रत्येक का अपना नेता है, लेकिन अंत के समय में लोग एक ऐसे करिश्माई विश्व नेता चाहेंगे जो उनकी सभी समस्याओं का पूरी तरह समाधान कर सके। दुनिया अब इस नेता यानी मसीह विरोधी की प्रतीक्षा कर रही है जो कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। बाइबल हमें बताती है कि जब पीले घोड़े का युग आएगा तो मसीह विरोधी बड़ी शक्ति के साथ उभरेगा और दुनिया में सभी को अपने अधीन कर लेगा। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब पीले घोड़े का यह युग आएगा तब आग पृथ्वी पर बरसेगी और दुनिया के एक तिहाई जंगलों को जला देगी, और जब यह युग आएगा तो दुनिया पर मसीह विरोधी का शासन होगा और कोई भी उसके चिन्ह के बिना कुछ भी खरीद या बेच नहीं पाएगा। इस समय चिन्ह प्राप्त करने और मूर्ति की पूजा करने से इनकार करने पर संतों को शहीद कर दिया जाएगा और फिर उन्हें पुनरुत्थित और रैप्चर किया जाएगा। जब इस प्रकार पीले घोड़े का युग समाप्त होगा तो 1000 साल के राज्य का युग खुल जाएगा। प्रभु ने हमें बताया कि संसार का विनाश और महान क्लेश एक चोर के रूप में आएगा, इसलिए अब हमें उस विश्वास को तैयार करना चाहिए जो महान क्लेश और विनाश के सभी परीक्षणों को दूर कर सकता है। यह तैयारी केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा ही संभव है, परंतु जो लोग इस प्रकार तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए सभी विपत्तियां और विनाश उन पर पड़ेंगे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में हमें स्पष्ट रूप से समझना और विश्वास करना चाहिए कि आज का युग काले घोड़े का युग है। उस अंतिम दिन के आने से पहले हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो लोग अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं उन्हें उनकी शहादत के साथ रैप्चर किया जाएगा। जो अमीर है वे आराम से नहीं रहेंगे, नहीं जो गरीब है वे अपनी गरीबी में जीते रहेंगे। इसलिए हमें अब जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमें न तो दुखी होना चाहिए और न ही घमंड करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि पीले घोड़े का युग निकट है और सभी संत संभवतः शहीद हो जाएंगे। समय समय पर हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो स्वयं मसीह की वापसी के समय का विश्लेषण करके प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने स्वयं के दिन और समय की घोषणा करके और कई अन्य लोगों को ऐसे दावों के साथ गुमराह करके बहुत भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार मसीह की वापसी तब तक नहीं होगी जब तक कि सातवीं तुरही नहीं बजती। इसलिए हमें कभी भी बाइबल के वचन की गणना करने और प्रभु की वापसी के लिए कोई तिथि निर्धारित करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने सपनों या दर्शनों में मसीह की वापसी की तारीख देखी है। उनके अपने सिर्फ सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि वास्तव में रैप्चर का समय उसके वचन के माध्यम से कब आता है, हमें वचन में विश्वास करना चाहिए। जब प्रकाशित वाक्य 6 में चौथा युग पीला घोड़े का युग आएगा तब शहीद 7 तुरहियों की विपत्तियों के साथ उठेंगे और संतों का पुनरुत्थान और रैप्चर होगा। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अब परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युगों के तीसरे युग में जी रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि आज का युग काले घोड़े का युग है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अभी पानी और आत्मा के सुसमाचार के बीज को बो सकते हैं, और जब हम अभी बीज बोते हैं तो जब पीले घोड़े का युग आएगा तब हम फसल को काटने में सक्षम बनेंगे। परमेश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति की दुनिया में कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ एक हफ्ते में अंकुरित हो सकते हैं, फूल और फल दे सकते हैं। रेगिस्तान के इन पौधों की तरह जब पीले घोड़े का युग आता है तब जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके बचाए जाते हैं जिसका हम अभी प्रचार कर रहे हैं वे भी शहीद हो जाएंगे और हमारे पुनरुत्थान और रैप्चर में शामिल होंगे जिसकी प्रभु ने हमारे लिए अनुमति दी है। क्लेश के युग में पानी और आत्मा के सुसमाचार में अब से अधिक विश्वास करने वाले लोग होंगे। दूसरे शब्दों में और भी लोग होंगे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के लिए शहीद होंगे। प्रकाशित वाक्य का वचन अपनी चर्चा को इसराइल के लोगों के उद्धार तक सीमित नहीं करता है। यदि कोई यह मानता है कि प्रकाशित वाक्य का युग केवल इसराइलियों के लिए आरक्षित है तो वह एक गंभीर गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य का समय आएगा तो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने से बहुत से अन्य जाति बच जाएंगे और अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के वचन के बारे में अपना ज्ञान सही से है या नहीं यह आपके विश्वास में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। इसलिए आपको यहां समझना चाहिए कि आज के मसीहियों के लिए पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करना गलत है। बाइबल हमें बताती है कि संतों की शहादत महान क्लेश की 7 साल की अवधि के मध्य बिंदु से थोड़ी देर बाद आएगी और उनका रैप्चर उसके तुरंत बाद होगा। हमें प्रकाशित वाक्य के वचन को वैसे ही हल करना चाहिए जैसा लिखा है, अध्याय दर अध्याय और वचन दर वचन, और पानी और आत्मा के सुसमाचार के भीतर। ऐसा करने से हम प्रकाशित वाक्य के वचन का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 हमें बताता है कि अन्य जातियों में से अनगिनत लोग भी अपने विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे और अपने विश्वास के लिए शहीद होंगे। हमें बाइबल पर विश्वास करना चाहिए जैसा कि लिखा गया है, न तो पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में, न ही क्लेश के बाद के रैप्चर में सिद्धांत में ही 1000 साल के राज्य में, लेकिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युगों में। प्रकाशित वाक्य के वचन का अध्याय 1 परिचय है, अध्याय 2 और 3 में संतों की शहादत की चर्चा है, और अध्याय 4 हमें बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वहां परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है। अध्याय 5 हमें दिखाता है कि कैसे यीशु परमेश्वर पिता की सारी योजना को पूरा करेगा, और अध्याय 6 परमेश्वर द्वारा नियोजित 7 युगों की योजना प्रदान करता है। इन सभी योजनाओं को प्रकाशित वाक्य के वचन के भीतर हल किया गया है। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य का वचन हमें बताता है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, अब से संत पुनरुत्थान और 1000 साल के राज्य की आशा में जीते हैं। प्रकाशित वाक्य 8:10-11 दूसरी विपत्ति का वर्णन करता है। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौन है और एक तिहाई पानी नागदौन सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गया। यहां यह कहता है कि एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था वह नदियों और पानी के सोते पर आ पड़ा। यह बहुत बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता है वह उल्का को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि स्वर्ग हिलता है तब तारे आपस में टकराते हैं और उनके टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8:12-13 दूसरी विपत्ति के बारे में बताता है। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7ों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यह हमें बताता है कि दुनिया के एक तिहाई हिस्से में अंधेरा छा जाएगा और दिन रात में बदल जाएगा। जब 7 तुरहियों की विपत्तियां इस प्रकार आरंभ होगी तो निश्चय ही आप और मैं उनमें जिएंगे, लेकिन जीवित संत जल्द ही शहीद हो जाएंगे और वे अपने विश्वास से शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। यदि आप प्रकाशित वाक्य 6 में प्रकट किए गए 7 युगों को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आपको यह भी स्पष्ट ज्ञान होगा कि आपको वर्तमान युग में क्या करना चाहिए और आपको किस तरह के विश्वास की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं उन्हें प्रकाशित वाक्य के युग में शहीद होना है, उन्हें परमेश्वर के राज्य की अपनी आशा के साथ इस युग का सामना करना होगा। इस संसार में रहते हुए संतों को अपने विश्वास के साथ अंत समय में अपनी शहादत की तैयारी करनी चाहिए और इस विश्वास को फैलाकर परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या आप परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युगों को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि अब हम काले घोड़े के युग में जी रहे हैं? यदि आप अब पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते हैं और न उस पर विश्वास करते हैं तो आप उन क्लेशों से बच नहीं पाएंगे जो पृथ्वी पर आएगी। इसलिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए जो क्लेशों को दूर कर सकता है। आपको सबसे पहले पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और पवित्र आत्मा को अपने उपहार के रूप में प्राप्त करके 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने और रहने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी तैयारी करो। यदि आप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अभी विश्वास नहीं करते लेकिन जब 7 तुरहियों की विपत्तियां आएगी तब विश्वास करेंगे तो आप कई क्लेशों का सामना करेंगे। यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप इसी क्षण पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करें, आप नया जन्म प्राप्त करें और परमेश्वर के लोगों के रूप में अपना भविष्य तैयार करें। परमेश्वर के द्वारा निर्धारित 7 युग। पहला, सफेद घोड़ा, पानी और आत्मा के सुसमाचार के आरंभ और निरंतर का युग। लाल घोड़ा, शैतान के युग के आगमन के साथ शांति भंग का युग। तीसरा, काला घोड़ा, भौतिक और आत्मिक अकाल का युग वर्तमान युग। चौथा, पीला घोड़ा, मसीह विरोधी के उद्भव के साथ संतों के शहीद होने का युग। पांचवा, संतों के पुनरुत्थान और रैप्चर और मेमने के विवाह भोज का युग। छठा, पहली दुनिया के विनाश का युग। और सातवा, 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी का युग, जिस पर प्रभु और उनके संत राज्य करेंगे। ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युग है। जो लोग इन युगों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उन्होंने अंत के समय में जीने के लिए अपना विश्वास तैयार किया है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप भी परमेश्वर द्वारा निर्धारित सच्चे विश्वास के इन युगों को समझने में सक्षम होंगे।